संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन मित्र हमारे ध्यान। 88 और 89 गाथा चलेगी, पढ़ो गाथाएं।
ऋण दियो बिलब जोड़ मुगदेशम सो सब दुख मोखम पाव दी अचिरण कालेण राणप गमपाणम परम चदवत नाहि संबद्धम जानदि जदिण चय दो जो सो मोख खयम कुणदि जिन देव का उपदेश यह जो हने मोहरु छोभ को बह बहुत थोड़े काल में ही सब दुखों से मुक्त हो जो जानता ज्ञानात्मक निज रूप अर पर रब को वह नियम से ही क्षय करे द्रग मोह एवं चोभ को।
इन गाथाओं में चारित्र मोह और दर्शन मोह दोनों के क्षय का उपाय एक ही बताया है और दोनों का फल भी एक ही बताया है। पहली 88वीं गाथा में तो ये कहा कि जो मोह और राग द्वेष को नष्ट करेगा वह सर्व दुखों से मुक्त होकर जल्दी ही मुक्ति को प्राप्त करेगा, है ना। जौन्य उपदेश है, तो यह जैन भगवान की उपदेश में ये बात कही है। और दूसरे में ये कहा अपने ज्ञानात्मक आत्मा को और जो परद्रव्यों को जानते हैं, इसका मतलब भेद विज्ञान पूर्वक जानते हैं, स्वपर का भेद विज्ञान करते हैं, वे दीर्घमोह को और राग द्वेष को नाश करते हैं। तो दोनों का उपाय तो एक ही बताया ना, दर्शन मोह और चारित्र मोह के नाश करने का उपाय भी स्वपर भेद विज्ञान को ही कहा है। और ऊपर कहा कि जो इनका नाश करेगा वही मुक्ति का सुख प्राप्त करेगा, माने इन दोनों के लिए कोई अलग अलग उपाय हैं और अलग अलग से हमको ट्रैक पर चलना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि भाई अभी तक तो हमने मिथ्यात्व के नाश का उपाय किया, अब हमें चारित्र के नाश का उपाय, चारित्र का दोष जो राग द्वेष हैं उनके नाश का उपाय करना है, तो वो अलग अलग से होंगे ऐसा कुछ नहीं है। उनकी दो अलग अलग क्लासें लगें, अलग अलग उनको समझाया जाए, एक को दर्शन मोह के नाश करने की विधि में ट्रेनिंग दी जाए, दूसरे को चारित्र मोह के नाश करने की विधि में ट्रेनिंग दी जाए, ऐसा अलग अलग कुछ नहीं है। और दोनों का उन्होंने कहा दिया दूसरी गाथा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में के जो आत्मा को ज्ञानात्मक और बाकी परद्रव्यों को जानता है, मैं दोनों के अंदर का भेद जानता है और पर से भिन्न अपने आत्मा को जानता है, उसका मिथ्यात्व भी नष्ट होता है और चारित्र मोह भी नष्ट होता है। तो एक तो प्रमाण सबसे बड़ा यही है कि जब मिथ्यात्व का नाश होता है तो उसी के साथ गारंटी से अनंतानुबंधी कषाय का नाश होता है और अनंतानुबंधी कषाय चारित्र मोह की प्रकृति है। वो चारित्र मोह की प्रकृति है और मिथ्यात्व के साथ उसका समझ लो गठजोड़ा बन गया, इसी वजह से वो हमारे चारित्र खाते में से ऐसे निकल ही गई जैसे कुछ उसका कोई लेने देने नहीं है, है? और हमने कह दिया यहां तक कि चरित्र मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे एक बड़ी हानि यह हुई कि चारित्र मोह में जो सबसे प्रबल प्रकृति है, माने उसको एक तरफ रखो अनंतानबंदी को और एक तरफ रखो बाकी 21 को, तो वे पासंग नहीं बैठती हैं। मतलब कोई ताकत नहीं है उनकी कोई मोक्ष मार्ग रोकने में, समझे ना। अब वे सब हो गई, चारित्र की जब बात आएगी तो वही बात होगी, और ये अनंतानबंदी की बात ही नहीं, अनंतानबंदी खत्म हो गई तो चारित्र ही हुआ नहीं मानने हम तैयार हैं। वो ठीक है, स्थूल रूप से बाहर में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चरणानुयायी योग तो जो बाहर में परिवर्तन दिखाई देता है उसके हिसाब से गिनती शुरू करता है ना। लेकिन उसको कुछ ही नहीं हुआ ऐसा मानते हैं। अब ये खाई बहुत चौड़ी है, कितनी चौड़ी है कि वो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ और हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं बचा, सब हो गया। अब इतना चौड़ा पाठ है कि कैसे पूरा हुए, समझे हैं? अनंतानबंदी गई, अब क्या है कि बाकी अब प्रत्याख्याना प्रत्याख्यान जाते रहे, उसमें क्या प्रेम पड़ता है, चले जाएंगे धीरे धीरे। अब तो उनको जाना ही है, अब तो ये सुनिश्चित हो ही गया क्या अब हम करुणानियों के उस सहारे जाते हैं तो फिर चक्कर में फंस जाते हैं। कैसे चक्कर में फंस जाते हैं कि एक बार जिसको सम्यक दर्शन हो गया, एक बार जिसके मिथ्यात्व का अभाव हो गया, अनंतानबंदी चली गई, तो वो बस मोक्ष जाएगा अर्धपुद्गल परावर्तन में। अब उसे ऐसी लंबी म्याद बता देते हैं कि अर्धपुद्गल परावर्तन क्या है, क्या तुम नहीं समझोगे, जिसमें कितने आनंद सागर होते हैं, क्या बोलते हैं कितने है? तो इतने काल में तुम मोक्ष जाओगे, ये काय की गारंटी है? ये तुम पूछने जाओ परमात्म किसी जोशी को कि मेरा हाथ देख के बताओ कि मेरे को मतलब कल लाभ होगा, तो वो कहे कि नहीं नहीं आपको बहुत लाभ है, बहुत लाभ है, 50 साल बाद आप अरबपति बन जाओगे, क्यों क्या कहोगे कि उसके लिए तो जन्म बदलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा और किसी अरबपति के घर में पैदा होना पड़ेगा, मैंने इस भव में तो मिलेगा नहीं, ऐसा ही अर्थ है ना उसका। मैंने इतने लंबे काल की क्या बात करना, वो तो वो काल ही वास्तव में अनंत है, वो तुम्हारे अनंत कई प्रकार के होते हैं ना, अक्षय अनंत, फलाना अनंत, फलाने अनंत, तो उनमें यदि गिनोगे तो अनंत ही है वो, अनंत समय है, एक एक समय को समय कहें और फिर सारे उसके समय निकालें तो कितने होंगे बोलो, अनंत ही समय होंगे कि नहीं होंगे। मैंने मेरे कहने का मतलब यह है कि हम उसको बहुत लंबा देते हैं। अध्यात्म तो ये कहता है, पूज्य गुरुदेव श्री तो हमेशा ये कहते हैं कि बहुत थोड़े काल में, एक दो भव में, कोई 10 भव, कोई 15 भव, कोई 5 भव, कोई 7 भव मोक्ष चला जाएगा, ऐसी बात करते हैं। क्यों है? मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गलत है, और न मैं ये कहता हूं कि उसका ज्ञान हमें नहीं होना चाहिए, कि हमें नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन उस पर ऐसा ज्यादा विचार करने की बात क्या है, क्या हम इतने काल तक संसार में रहने को तैयार हैं, हमारे मोक्ष की गारंटी हो जाना चाहिए, फिर कोई चिंता की बात नहीं है, अनंत काल बाद चले जाएंगे कितना धैर्यशाली है, ये संसार के दुखों से ये विरक्त हुआ है, ये विरक्त होने के लक्षण है। एक दफे हमको तत्वज्ञान हाथ लग गया है तो टोटम जी ने लिख दिया है कि इस भव में, इस भव नहीं तो अगले भव में वो संस्कार जाएंगे, क्यों, और हमारा तुम्हारा काम हो जाएगा, हमें संस्कारों के भरोसे रहना है। इस भव में हम इतने अनुकूलता में है और इतना विवेक हमारे ख्याल में आ गया है, यहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? अभी तुम कल्पना करो, जो 125 अरब लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, उनका तुम्हारी पोस्ट पे पहुंचने में उन्हें कितना प्रसाद चाहिए। नरेंद्र मोदी की पोस्ट के पर पहुंचने से कम पुरुषार्थ नहीं है। मेरा मतलब समझे कि नहीं समझे? कल्पना करो उसमें, पहले वो मतलब जितने मतलब भारत में हो गए, फिर जैन हो गए, फिर जैन में भी दिगंबर जैन हो गए, फिर मोक्षु हो गए, फिर उसमें इतने इतने संस्कार हो गए, फिर उसके माँ बाप को भी ऐसा भाव आवे, उसे भी आवे लौकिक में बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर बनने का विकल्प नहीं हो, अरबपति बनने का विकल्प नहीं हो। एक आसान नहीं है, बहुत बहुत कठिन है। अत्यंत बोधि दुर्लभ जिसे बोलते हैं ना, अत्यंत बोधि दुर्लभ है। बोधि दुर्लभ भावना में तो यही बताया है सब जगह, तो अंत में यही बताया ना कि आत्मज्ञान का प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। कहा कि नहीं कहा? तो मैंने 12 भावनाओं की लिखी थी वो बोधि दुर्लभ भावना, तो मेरे दिमाग में एक विकल्प आया कि हमारे शास्त्रों ने लिखी है, आचार्यों ने लिखी, तो उसकी मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे विवेक से मैंने निर्णय किया कि निबोध से निकलना बहुत मुश्किल है, फिर तुरंत जिस पर्याय में आना मुश्किल है, उन्हें वहां से गिनाना शुरू करते हैं वो क्यों, और फिर बीच बीच में वो एक पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, और उस पेड़ को पूरा लेके आग लगा दो, राख हो जाए, उस राख को गंगा नदी में बहा दो, और जो परमाणु अलग अलग हो गए ना, वे सारे परमाणु फिर इकट्ठे हो गए, वैसे ही का वैसा पेड़ बन जाए क्या? इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है। ऐसे बहुत बहुत उदाहरण देके क्योंकि बताए ना, तो मेरे दिमाग में आया कि वहां से अब यहां तक आ गए, अभी तो हमको समझना है और हम जैसों को ही समझाना है। जो यहां तक आ गए माने मनुष्य पर्याय में आ गए, जैन कुल में आ गए, मुक्त हो गए, इस बात को समझने लग गए, है ना? इसलिए हमने बस नर कुल से ही शुरू किया। क्या है पढ़ो है भाई? अरे आप इसे देखो, जनागम भी पढ़ोगे, पढ़ना चाहिए, जितनी 12 भावनाएं हैं, जितने कवियों की आचार्यों की, वो सब पढ़ना चाहिए और उसमें से रहस्य निकालना चाहिए। अब मैं एक बात आपसे कहता हूं कि जो परंपरागत पद्धति रही है वो बहुत लिमिटेड है, 2-3-4 ऐसे बनाएंगे ग्रुप, उनमें वो आ जाएगी बस, यहां से एक एक कहा और बस वो आ जाएंगी। अब मैंने यहां तक की वो सब चीजें छोड़ी, क्या नरदेह से, नरदेह से शुरू किया ना, क्या नरदेह तो हमें मिल गई ना है? अब और चीजें भी जो हमें मिल गई, अब उनको उपलब्ध हो जाने के बाद अब हमको क्या करना चाहिए, हमें तो ये समझाना है ना, हम इनका इंतजार करें? कभी वो पेड़ फिर द्वारा ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर वो ऐसा बनेगा, फिर ऐसा हो गएगा, बेई के बेई परमाणु हो गया है, अब उनका हिसाब लगाते बैठे। और ऐसी ज्यादा बहुत चीजें नई डाल दी, आखिर 16 पंक्तियां हैं, तो उन 16 पंक्तियों में जो चीजें किसी ने आज तक नहीं कही थी दुर्लभता में बताने में, अब आप हर एक दृष्टिकोण अलग अलग होता है, देखें आप उसको, यदि आपने देखें उस दृष्टि से कि भाई इसमें क्या विशेषता है, हैं क्या रमेश जी समझ रहे हैं ना, तो उसमें वो चीजें जो किसी ने आज तक नहीं कही ऐसी भी चीजें हैं। बोला नर देते तो बहुत लोग आएंगे। अब बोलो आगे पढ़ो। नहीं नरदेह ही बोलो, यही छंदे। अब देखिए उत्तम देश की कोई बात नहीं करता, यानी ये हम भारत में पैदा हो गए और इसलिए हमको इतना महान अच्छा संगम मिल गया, इतनी आजादी मिल गई कि हम सारी जिंदगी मांस नहीं देखें तो हमारी जिंदगी निकल सकती है। हम मांस का रंग भी नहीं जाने तो निकल सकती है। और यदि अमेरिका लंदन में पैदा हो गए होते, बढ़िया से बढ़िया देश जिनके लिए लोग दौड़ दौड़ते हैं, मरते हैं जिनमें जाने के लिए, उनमें एक भी आदमी इसकी गारंटी नहीं कर सकता। उसे लगभग सप्ताह में एक दिन तो वो सब देखने ही पड़ेंगे। क्यों? सब्जी लेने जाना पड़ेगा और सब्जी की दुकानें और वे मांस की दुकानें एक सी लेन सी लगी हैं, फिर खत्म हुई। वहां भी आपको पास होना ही पड़ेगा। ये कोई साधारण बात है क्या शांतिलाल जी? ये हमारा कोई साधारण सौभाग्य नहीं है कि हम यहां ऐसे बाबूनगर की ऐसी जगह बैठे हैं कि जहां 4 किलोमीटर चारों तरफ जाएं तो वहां मांस देखने को नहीं मिले, न किसी के घरों में, न किसी के मतलब दुकान में, न बाजार में। मतलब है, अब आपको पता ही नहीं चलता हम क्या उपलब्ध हो गया है, ध्यान ही नहीं देते है ना? क्या नर देह उत्तम देश, उसका मतलब समझे ना। और फिर तीसरी है पूर्ण आयु, क्या है ना हमारा मदा। नर देह उत्तम देश और ये पूर्ण आयु, पैदा होते ही गर्भ में आके गर्भपात हो जाता, फिर आके जन्म हो जाते, 2 महीना के मर जाते, 6 महीना के मर जाते। जब हम लोग पैदा हुए तब तो बच्चों के मरने की इतनी थी कि समझो 80% मर जाते थे। हिंदुस्तान में जो इतनी संख्या दिखती थी ना, वे 20% जिंदा बचे उनकी है, बहुत कम थी। अब तेजी से तो अब बढ़ रही क्योंकि मरना बंद हो गया। आप समझ रहे मतलब ये मैंने पूर्ण आयु, हम 80 वर्ष तक की आयु मिल जाना, ये कोई साधारण पुण्य का काम नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये साधारण सौभाग्य नहीं है। हमको जो जो सौभाग्य मिल गया हम वो दुखोना नहीं रो रहे कि हमें जो जो नहीं मिला है और मिल गया हमने छोड़ दिया है, उससे हमको क्या लेना। देखो पूर्ण आयु और शुभ आजीविका, ये देखिए माने कितने कितने तरह की आजीविकाएं हैं जिनमें हिंसा, झूठ, चोरी, नमालू सब चीजें हैं। कोई भी ऐसी नहीं है कि जहां आपको मतलब बिल्कुल निरापद पाप से रहित प्रवृत्ति की हो। अब कुछ अब इनकी नासमझी के लिए मैं क्या शब्द कहूं कि अभी आप जैसी लोग आजीविका करेंगे, मान सरकारी स्कूल में नौकरी करने चले गए तो वो बढ़िया है, आप ऑफिसर बन गए, महेश जैसे वो बन गए भोपाल में जैसे ऑफिसर। मेरे पास आके बैठ के रोया था वो महेश, दादा मैं तो इस्तीफा देता हूं। क्यों भैया? क्यों बेटा, क्या है? बहुत परेशान करते हैं। हम तो समझते तेरा नाम लेते हैं दुनिया में कि वो डायरेक्टर बन गया है एजुकेशन में, कुछ नहीं रखा कहीं भी। शांति जी को भी ऐसा पागलपन सवार हुआ था तो आएगा मैं तो जा रहा हूं गवर्नमेंट सर्विस में, इसमें जाना है। पहले तो मैंने बात नहीं की, नाराज हो गया, फिर बहुत गुस्से में बात की, जाओ हर जाओ मेरे से बात मत करो। कहां नरक में जाने की सोच रहे? हम तो छोड़ के आए ना उस नरक को, देख के आए ना क्या है। वहीं गवर्नमेंट की सर्विस में क्या है वो सब देख के आए हम। कितना कितना दुर्भाग्य है, हमने बोला ना कि हम पढ़ाने जाते थे और आधा घंटा बैठने चार के लिए मिलता है ना, क्या क्या बोलते हो उसको रेसेज, उस रेसेज में बैठते थे तो जो हमारे साथी अध्यापक थे वो इतनी गंदी गंदी बातें करते थे कि बस उनके साथ बैठा नहीं जाता था। तो ऐसा बहाना बनाकर कि हम तो घर की चाय पीते हैं बाजार की नहीं पीते, बाजार की पीते थे ऐसी कोई बात नहीं है, तो घर चले जाते थे क्योंकि इनके साथ नहीं बैठना पड़े। और तो घर जाने में क्या था कि आधा घंटे में 10 मिनट तो जाने में लगते थे और 10 मिनट आने में लगते थे, तो रस्ते ही रस्ते में निकल जाता था, पैदल ही जाना आना पड़ता था। वहां घर पे 5 मिनट भी बैठने को शांति से नहीं मिलते था, लेकिन इन इन दुष्टों की संगति से कैसे बचे। गांधी जी की समझ में आया, अरे अम्बे चंदाचार्य को आपने ख्याति पढ़ा कर इतना महासौभाग्य मिला, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अकेली शांति जी को नहीं, मैंने औरों को भी बहुत समझाया, अभय जी को भी बहुत कहा था जब वे यहां से गए थे। मैं अपने मेरे दिल में जो सच्ची बात है वो कहता हूं, ये दुनियादारी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, पर अब तो क्या मतलब है, मैं तो अब तो मेरी जाने की तैयारी है, मुझे किसी से क्या लेना देना। तुम खुश हो तो खुश रहो, नाराज हो तो नाराज हो, क्या करो बोलो क्या फायदा। तो वो अपन पढ़े कहां है, नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु और शुभ आजीविका। अब आपको आत्मख्याति पढ़ाने को मिल रही है शांति से, पर आपको दो रोटियों की व्यवस्था है। अब इसको इसको कुछ नालायक कहते हैं, नहीं नहीं धर्म की आजीविका है, इन इन सब पापियों की धर्म की नहीं है, इसमें पाप की आजीविका करनी है। कि महापाप करने वाले हमें ये बताते धर्म की आजीविका है। क्यों, इस शांति जी संस्कृत पढ़ाते हिंदी पढ़ाते तो उन्हें इतने पैसा नहीं मिलते, इससे दूने मिलते हैं, इनके साथियों को दोनों दिन तिगुने मिल रहे हैं। वही तो टॉपर्स थे क्या, लेकिन मैं उन्हें महाभाग्यशाली नहीं कहता हूं। ये हमको जो कुंद कुंद अमृतचंद को पढ़ाने को मिलता है, इससे बड़ा भाग्य दुनिया में नहीं। यदि हमारे पास हो तो अरबों रुपया दे करके भी ये पढ़ाने को मिले तो लेना चाहिए, है ना। अरे ऐसे लोग हैं वहां संजीव गोदा, मैं उसकी भी प्रशंसा करता रहता हूं ना, मेरे में से ज्यादा ऐसी प्रशंसा पाना बहुत आसान नहीं है बेटा, तुम्हारी जिंदगी में निकल जाएगी ऐसा तुम एक शब्द भी नहीं पा पाओ, वैसे ही नहीं करता हूं। हर कीमत पर उनको एक तत्व ज्ञान पढ़ाना है, बोलो कितनी भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, क्या हो, पैसे मैसे का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई भी अरबपति नहीं है, वो तो क्या करें उनके पास है, हमारे पास नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो शुभ आजीविका, ये बढ़िया से बढ़िया आजीविका है, ये खराब नहीं है। ये तत्व के प्रचार करने के काम में रोटियां तो खाएंगे, हवा खा के तो नहीं जियेंगे। गुरुदेव रोटी नहीं खाते थे, और गुरुदेव की जो जो आवश्यकताएं थी वो समाधि से पूरी होती थी कि नहीं, क्यों उनमें ऐसा लगता था कि ये नहीं, ये तो बहुत महंगी है, ये नहीं होगा, ऐसा होता था। लेकिन तुम्हें तो वो महंगी सब्जी होगी तो नहीं ला पाओगे बेटा, दाल के साथ खाना, अब दाल भी नहीं मिलेगी, वो भी बहुत महंगी हो गई। मेरे कहने का मतलब हम त्यागी हैं उनसे, जो समाज अब मैं गुरुदेव तो हमारे हैं इसलिए कह दिया, और बाकी साधु संतों की नहीं कह सकता हूं। मैं सबको दो रोटियों की व्यवस्था और जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी तरह समाज को अपनी सेवाएं देगा तो पूरी तरह समाज पर ही निर्भर करना पड़ेगा, हैं हवा खा के कोई नहीं जीता है, समझ रहे ना। ईमानदारी की जिंदगी एक नया पैसे का विकल्प नहीं, यहां वहां का क्या शुभ आजीविका, ये साधारण शब्द नहीं है, इसमें मेरा दिमाग अटक जाता है कि बोलूं घंटों, समझ में आई ना। फिर दुर्वासना की मंदता, अभी दुर्वासनाएं खत्म हो जाएंगी ऐसा तो है नहीं इस भूमिका में, लेकिन इतनी तीव्र भी नहीं है कि जिनके हम सब कुछ न्याय अन्याय और किसी बात का हम विचार नहीं करें। जो हमारी भूमिका है उसमें जो न्यायपूर्वक मर्यादा है उसी तरह की हमारी आचरण है। और परिवार की अनुकूलता ये भी कोई साधारण बात नहीं है। पत्नी कहे कि चलो शिविर में, पति कहे नहीं कश्मीर जाएंगे, क्या करो बोलो। उल्टा भी हो सकता है, पति कहे यहां चलो, पत्नी कहे कि नहीं सिनेमा जाएंगे। यदि अनुकूलता नहीं हो पत्नी की, मां बाप की, बाल बच्चों की, तो भी बहुत कठिन होता है। यदि भाग्य से हमको ऐसा परिवार मिल गया है कि सब एक ही लाइन में, सब एक ही कहते कि हां चलो, तो कोई ना कहते ही नहीं है, एक मत भी नहीं हम आता है घर में कि शकर जी चलना है कि नहीं नहीं चलना है, चलो चलो सब तैयार है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, हरेक को मिल जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। जिनको नहीं होगी वो नरक जो वे भोग रहे हैं ना उसका आपको पता नहीं है, खासकर महिलाओं में, क्योंकि पति देव तो अकड़ू होते हैं तो वे तो नहीं परवाह करते हैं महिलाओं की, लेकिन महिला तो बेचारे की पति की परवाह करनी ही पड़ती है ना। और वो नहीं आए तो नहीं आए, नहीं आए शिविर में तो नहीं आए, और अकड़ जा नहीं जाने देना, कैसा मैं अकेली चली जाऊंगी, नहीं जाने देना अकेली, क्या करो। मैं बहुत ऐसी महिलाओं को देखा है, ख्याल में देखा है कितनी तकलीफ में होती हैं वो। उनके लिए तत्व ज्ञान ये हमारा एक प्रवचन सुनना कितना भारी पड़ता है। अमेरिका में एक महिला है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो वो मेरे छह छह घंटे प्रवचन सुनती रहती, गुरुदेव के मेरे एकदम चालू रखती जोर से, और घर के किसी भी कोने में रहें तो आवाज वहां पहुंचना चाहिए, इतनी तेज आवाज में चलाती है। रसोई में रहे तो वहां पहुंचना चाहिए, बाथरूम में रहे तो वहां पहुंचना चाहिए, बैठक जहां हो वो उसकी आवाज आना चाहिए, प्रवचन भी चले चाहे वो अपने भजन मंगे जो अच्छे अध्यात्मिक हैं ये चले। तो उसके पति के दिन भर क्या करें, कोई और वह सुन ही नहीं पाते, फोन सुनना मुश्किल है, बोलो क्या करें, अब घर छोड़ के चले जाए। अब तो बदल गया मामला कुछ, अब तो उस पति को भी थोड़ा रसाने लग गया है क्या नहीं, कितनी तकलीफ थी बोलो, हम कैसे नहीं सुन सकते। हम गाड़ी में जाते हैं ना, कार में, जैसे यहां से आगरा जाना पड़ा हमें, आगरा क्या करना, लड़ाने से वहां जाते हैं मंगलायतन, तो आगरा आ जाता है उधर रास्ते में, क्या दिल्ली मिल्ली जाते हैं क्या जगह जाते हैं, तो हम कैसे चलाते हैं, सबसे ज्यादा चलाते हैं क्या चलाते हैं बताओ है? कलश पर ध्यान हुआ एक बार, वो तो चलेगा एक दफे दो दफे और चाहे जो कुछ चले कि नहीं चले, लेकिन कलश पर ध्यान हुआ तो चलेगा ही चलेगा, हम एक सेकंड बंद नहीं करते हैं। बीच में रास्ते में पेशाब करने को उतरे तो चालू रखते हैं और जहां तक आवाज पहुंचे वहीं तक पेशाब करते हैं पर हमारी पत्नी तो और ज्यादा पागल है, वो तो एक सेकंड को बंद नहीं करने देती, एक सेकंड को। अच्छी बात है कि बुरी बात, बोलो कैलाश जी सुनते, ड्राइवर परेशान है हमसे उन्हें समय सार कलश श्रद्धा निभा सुनना पड़ता है, उनको तो उनके कभी अपने अलग रखे रहते हैं, समझ में आई ना, जब उनको जरा सा भी मौका लगता है तो ये अपने सुन लेते हैं। देखो नर देह उत्तम देश पूरण आयु शुभ आजीविका और दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूल, ये सब चीजें नहीं मिलेंगी कहीं भी। देखो ये आचार्यों को चैलेंज नहीं है, उल्टा अर्थ नहीं लेना कि हम तो अपनी बात कह रहे हैं, हमने सचमुच अपनी भावना लिखी है, मतलब जो परंपरागत चीज है उसे हमने परंपरागत तरीके से वो नहीं निभा दिया क्या, क्या कहते हैं, अपनी ड्यूटी निभा दी, परंपरा के तीर से सब लिख दिया, हमको जो हमको दिखती है आंखों के सामने हमने वो बात की है, देखो है। अब परिवार की सद सज्जनों की संगति, ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे दुष्ट लोग मिल जाते हैं कि दो मिनट भी उनके साथ शांति से नहीं बैठ सकते। मैं तुमको एक तरकीब बताता हूं, तुम ट्रेन में भी कहीं बैठो, बस में भी बैठो, तो वहां पर इतनी सात्विक वृत्ति से रहना कि जिससे तुम्हें कोई, तुम्हारे पास कोई खोटी वृत्ति वाला आएगा ही नहीं, और इकट्ठे होकर के जो सात्विक वृत्ति वाले हैं वे तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैं ये कहता हूं मेरा विद्यार्थी जहां बैठा होना चाहिए वहां के आसपास के लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि यहां कोई महापुरुष बैठा है, समझ में आया ना, ये समझ लो आप। अब कितनी बड़ी ड्यूटी है तुम ये समझ लो, ऐसा नहीं तुम ऐसे ही निकल जाओ वहां से, ये नहीं, इसका मतलब तुम्हारे बगल में जो बैठा है और आठ घंटे तुम्हारे बगल में बैठा रहा और उस तक तुम्हारी गंध भी नहीं गई जो असली तुम हो, तो फिर क्या मतलब तुम्हारे बैठने का, तुम्हारे उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, पहनने में, उड़ने में, बात करने में, पढ़ने में, लिखने में, वो चीज होना चाहिए कि कम से कम एक कूपा जिसमें तुम बैठे हो है, वहां के लोगों को तो ये लगे कि हाँ ये बहुत कोई सज्जनोत्तम पुरुष यहां बैठा है। हमारे घर में लगनी चाहिए, पड़ोस में तो लगनी चाहिए, लेकिन वो भी चार छह घंटे हमारे ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। सब सज्जनों की संगति और सब धर्म की आराधना, ये जो जो गुरुदेव से अपन को प्राप्त हो गया है। अब वैसे तो जैन धर्म सब धर्म ही है, अब जैन धर्म तो लाखों लोगों को मिल गया है, लेकिन अपन देख नहीं रहे कैसी जिंदगी जा रही है, किसी की हम भलाई बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो असली तत्व ज्ञान जिनके पास नहीं है वो काय का सद्धर्म उन्हें मिल गया, जैन धर्म मिल गया होगा, सद्धर्म नहीं मिला। सद्धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ, इनमें से आगे आगे की चीज अत्यंत कठिन है, और आत्मा की साधना, फिर अंत में आत्मा की साधना हमारे अंतिम बिंदु है, और हमारे लगभग हम सब इनमें ही से गुजरे हैं, गुजर रहे हैं, रहते हैं, हमने उन सारी परिस्थितियों को लिखा है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम तो अपने लिख रहे, उसने मैं लिखा ना उसमें, ये तो हम अपने लिए लिख रहे समाधि मरण, तो बारे भावना भी हमने अपने ही लिए लिखा क्या, नियम सार वाले कहते हैं हम अपने लिए लिखा, अपने लिए लिखा, देखो देखो हमारी ही बातें हैं, ये कोई दूसरे की बातें ही नहीं। आगे और बहुत बातें हैं, इसकी मैं कोई पूरा मौजूदा भावना पर प्रवचन नहीं कर रहा हूं जो सब बातें बताऊं, लेकिन मैं एक इस पॉइंट पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि ये हम सबसे बड़े भाग्यवान जीव हैं। ये अरब लोगों में सबसे ज्यादा भाग्यवान यदि कोई हैं तो उन लोगों में से वो लोग हैं जो इस टोडरमल स्मारक भवन की बाउंड्री में हैं। मतलब ऐसा नहीं बाहर कोई है ही नहीं, मैं किसी का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमें जो दिखाई देते हैं उसकी बात हम करते हैं क्या। तो अपन पढ़ रहे थे, दो बातें बताई थी ना मैंने, कि एक तो मैंने क्या बताई थी बोलो, याद है, मैं बताता हूं कि इनने दर्शन मोह और चारित्र मोह को नाश करने की एक ही विधि बताई है, और उससे ही लिखा है कि तुम्हारे दोनों नाश हो जाएंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसमें मैंने बहुत ध्यान से देखा इस पॉइंट को, और इसमें ये कहना चाहता हूं मैं कि दर्शन मोह के लिए जो त्रिकाली ध्रुव भगवात्मा आत्मा का निर्णय करके आगम से, युक्ति से, गुरु से, है ना, सोच कर, तर्क के आधार पर, युक्ति के आधार पर, अपनी रुचि की तीव्रता से, और उसमें अपनापन होना, ये मार्ग यदि मिथ्यात्व के नाश का है तो बस यही यही, मैंने यही का मतलब कि वो इतनी अधिक रुचि हो जाना कि उसके बाहर निकलना ही नहीं, उसकी निरंतरता बनी रहना, ये उपाय चारित्रमोह का है। मैंने ट्रैक बदलना नहीं है शांति जी, क्या वो जो निर्णय करना, वो रुचि होना और लगातार होना, बस वही वो रिपीटिशन, बस रिपीटिशन, वो चारित्र के नाश का उपाय है। नहीं वो छठवें स्थान हो जाए, फलानी प्रकृति फिर ऐसी नाश होगी, वो सब होती रहेगी। वो कर्म का काम कर्म में ऑटोमेटिक होता रहेगा, तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना है। मतलब हमारे यहां सबसे बड़ी कर्म की थ्योरी में ये मामला है कि बेकर्म अपने हिसाब से बनते हैं, बनते रहेंगे, और उसमें तुम्हारे जो भाव निमित्त होने होंगे वे भाव भी तुम में होंगे, अथवा तुम में जो भाव हो रहे हैं उनके निमित्त से जो वस्तु का स्वरूप है उसके हिसाब से वे कर्म बन जाएंगे। वहां कोई अन्याय होने की संभावना नहीं है, वहां कोई बेईमानी की संभावना नहीं है। करुणान योग जैसा ईमानदार कोई व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा। माने जैसे जैसे तुम भाव करोगे उसके अनुसार कर्म बंधादि की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ईमानदारी से होगी, उसमें कहीं कोई बेईमानी संभव नहीं है। उसकी तरफ देखने की तुम्हें एक मिनट सखराब करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं कि उसे नहीं पढ़ना, ऐसे कर्म बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, नहीं नहीं, जो तुम्हारे भाव हैं वैसे ही बनेंगे। तुम्हें जो कुछ करना है तो हम भावों को तो संभालें, अरे तुम अपने आत्मा को संभालो तो सब भाव माप समझ जाएंगे। क्यों, क्या करने बोलो? अब हम सब लोग इस प्रयत्न में रहते हैं कि मैं अपने परिणाम संभालू, मैं परिणाम संभालू, परिणाम संभालू, ये गलती ना हो जाए, ये नहीं, ये पाप ना आ जाए, ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए। अरे तुम असली चीज को देखना तो उसमें परिणाम अपने आप समझेंगे। तो परिणामों को संभालने से परिणाम नहीं समझते हैं। वो तो एक कवि ने तो लिखा है कि इन परिणामन की संभाल में बातें गाफिल हो मत प्राणी। क्या लिखा है कि तू इन परिणामों को संभालने में ही गाफिल मत हो जा, सारी जिंदगी इसमें खराब मत कर। हमने क्या अर्थ लगाते हैं उसका कि परिणामों को 24 घंटा संभाल, कहीं बिगड़ ना जाए। और बोले गाफिल मत हो जा, गाफिल मत हो जा माने संभाल संभाल। अरे मेरे संभाले संभलते ही नहीं है, उनके संभालने में पागल मत हो। क्यों, अपने को संभाल तो वे परिणाम अपने आप संभलेंगे। मैं ऐसा ही अर्थ करता हूं, ताते निज परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी है। और वो आगे की पंक्ति धरे में तो जरूरत नहीं है, क्या कहे बंद मोक्ष परिणामन, ऐसा नहीं आती नहीं है मुझे, बंद मोक्ष परिणामन ही सो एक कहत जनवर वाणी, ऐसा कुछ है ना कि बंद भी मोक्ष होगा और मोक्ष भी परिणामों से होगा, बंद भी परिणामों से होगा और मोक्ष भी परिणामों से होगा। अरे भाई उसका कारण, असली कारण तो त्रिकाली ध्रुव है, उसके आश्रय से होने वाले जो परिणाम हैं उनको भी कारण कहा जाता है। एक है अधिकरण कारण और एक है करण कारण, विकल्प समझा ना, करण और अधिकरण। तो आप मुझे ये तो सातवीं विभक्ति और एक तीसरी तृतीया, ये कितनी दूर दूर हैं, ये जब दूर दूर कहां है, एक करण एक अधिकरण, अधि और लग गया बस, करण ही तो है, करण और अधिकरण कि उसके आधार से होगा। और ये कहो कि वो करेगा, वो मतलब साधन, साधन के रूप में प्रयोग करो तो अधिकरण के रूप में प्रयोग करो, एक ही बात है। देखो अभी जिस प्रकार तीर तलवारधारी मनुष्य, तलवार की बात तो मैंने कल कर दी थी, कभी तलवारधारी को चलाने के लिए बात करते हैं तो लोग उधर ले जाते हैं कि आपको ऐसे व्रतोपवास आदि की तलवार चलानी पड़ेगी, ये तो यही तलवार चलानी है। तलवार माने तुम्हें ये ज्ञान हो गया कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अपन मैं हूं, तो इसके अलावा मैं नहीं हूं, तो अब इसमें अपनापन करके बैठ, उधर ही अपने उपयोग को लगा। तीसरी जो बात है, अभी इसको जरा बड़ी भाषा में कहो, ध्यान करो। हम ये कह रहे उसी को देख, उसी में अपने उपयोग को लगा। अब ये क्या है, दोनों में फर्क क्या है? इसी का नाम तो ध्यान है, है ना। तलवार शत्रुओं पर अत्यंत वेग से प्रहार करे और तत्संबंधी दुखों से मुक्त होता है, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार अति दीर्घ उत्पादमय संसार मार्ग में किसी भी प्रकार से जिनेन्द्र देव के अति तीक्ष्ण असिधारा के समान उपदेश को प्राप्त कर, जो पुरुष मोह राग देश पर अति दृढ़ता पूर्वक प्रहार करता है, वह शीघ्र सब दुखों से मुक्त हो जाता है। अब लिख दिया अर्जुन देव का उपदेश, जिन अर्जुन देव का उपदेश कहां से लाए लोग? इसलिए हम तो महाभागे हैं, पंचम काल में तीर्थंकर तो हैं नहीं, उनका वियोग है। अब उनको रो क्या कहते हैं अपने पद्मा पर मलधारी देव है? और आचार्य क्या कहते हैं कि हम बैठे हैं ना, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। हम बैठे हैं, जो भगवान कहते थे समोषण में वो ही हम कह रहे हैं। गुरुदेव फरमाते थे ना, सौ इंद्रों की उपस्थिति में है? राजा महाराजाओं की उपस्थिति में, मुनि राजाओं की उपस्थिति में जो सर्वज्ञ भगवान ने बात कही थी वही हम बात कह रहे। क्यों? अपन नहीं कह सकते? नहीं साहब, वे उनकी कही हुई कहते होंगे, हम तो नहीं कहते। क्यों? ये सात तत्व भगवान के कहे हुए नहीं है, ये ज्ञानावरण आदि आठ कर्म भगवान के कहे हुए नहीं है। शाम को गोमर साहब पढ़ाते हैं दीपक जी, तो भगवान की कही हुई बात नहीं है। वे तो रोजिना कहते हैं बेचारे कि भगवान की कही हुई बात है। और गाथाओं में जन ही निर्दिष्ठा भंडा खलु सर्वदर्शी ही, बार बार जिन्हें भगवान ने कहा है, सर्वदर्शी भगवान ने कहा है, ये सब आती कि नहीं आती बातें? और कैसे कहें, क्या अभिमानी हो गए जी अपनी बात को ऐसा कह रहे। तो लोग तो उन पर पद्म प्रमाणधारी देव को भी कहते हैं, देखो ये बड़े बन गए, ये कह रहे हम बहुत बन गए भगवान। अरे हम भगवान नहीं बन गए, हम सिर्फ इतनी बात बता रहे कि हम तुमको यहां वहां की बातें नहीं बता रहे हैं, जो सर्वक भगवान की दिव्य ध्वनि में आया था वो ही बात कह रहे हैं। बोलो, अपन ने इतनी बातें करी, अपन करते हैं, कोई भी करते हैं, अपने विद्यार्थी करते हैं, कोई करते हैं, तो मेरे सर्वक भगवान की कही हुई बातें नहीं है, समोषण में ये बातें नहीं आई थी, कि तुमको भरोसा नहीं है क्या कि किसी ने बीच में लगा दी है? माने यहां की जो सात्विक वृत्ति है, और जो आप यहां पर दो चार महीने ही रह जाओ इन सबके बीच में, तो इतनी श्रद्धा तो मेरे ख्याल से जागृत हो ही जाती है ना, कि आशंका है तुम्हें है? ये सब बात हमारी ही है, इसमें कुछ भगवान की भी है? अरे कुछ नहीं, सब भगवान की है, हमारी कुछ नहीं है, समझो ना। ये सब उस कुएं में से पानी निकाला, हमारा तो घड़ा है जो लेके आए हैं हमने, क्या वो सब भगवान की वाणी है। लेकिन अति तीक्ष्ण धारा असी धारा के समान उपदेश को प्राप्त कर, जो पुरुष मोह राग देश अति दृढ़तापूर्वक प्रहार करता। अब ये कह रहे हैं कि तुम नहीं मानो तो बस कह दो, जब तो इंतजार करो, जब तक तो भगवान नहीं आएंगे देव ध्वनि का, तो ये मनुष्य तुम खुद में जाएगा ना। सोचो सब जने कहता हूं ऐसा, ये कहां ये कहां है, तुम्हारा प्रवचन सुने कि इनका सुने, इन बच्चों का करें, आज जिसको आप गद्दी पे बैठा देते हो इन बच्चों को भी गद्दी पे बैठा देते हो। हमारे यहां तो ऐसा है कि जिंदगी भर किसी को गद्दी पे बैठना ही नहीं देना, अपन मर जाए तब भी कह के जाना कि हमारी गद्दी पे किसी को मत बैठने देना, ये नीचे बैठा लेना, हमारी गद्दी अलग लकीर देना, उस पर हमारा फोटो रख देना। अपन ने ऐसी गद्दी कोई बनाई नहीं है क्या? भट्टारकों की गद्दियां होती हैं, इनकी गद्दियां होती हैं, आचार्यों की गद्दियां होती हैं, उन्हें पद दिए जाते हैं, आप समझे ना। फिर वो लिखते हैं कि कौन सा वो, जैसे वो शांति सागर जी से पट्टा पट्टाचारी पट्टाधीश लिखते हैं आज का, वो आचार्य में मजा नहीं आता, पट्टाचार्य नहीं पट्टाधीश ऐसी तो गद्दी है। अरे वो गद्दी की बात नहीं, बात एक नहीं बोलते सर्वज्ञ की, और सर्वज्ञ की गद्दी में बैठना है हमको। सर्वज्ञ की गद्दी से कोई, हमारी कोई गद्दी फद्दी नहीं है, जो आए वही बैठे, उसी पे हमने उस पहले दिन से, जिस दिन आए थे उस दिन से उसी पे हम करते हैं, उसी पे हमारा विद्यार्थी प्रवचन करता है, उसी पे सब ख्याल में है ना। भगवान की गद्दी, भगवान का अपन ध्यान रखो, बस खत्म। भगवान की बात अपन कहते हैं, बात पे ध्यान रखो ना, और तुम्हारी बात में दम होगी तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। उसमें क्या विकल्प करने की जरूरत है, विकल्प के लिए कोई अवसर नहीं है। शीघ्र ही दुखों से मुक्त होता है, अन्य कोई व्यापार प्रयत्न क्रियाकांड समस्त दुखों से मुक्त नहीं करता। देखो, अन्य कोई व्यापार क्रियाकांड अन्य से मुक्त नहीं करता, अभी क्लियर है ना। इसलिए मैं मोह को क्षय करने के लिए संपूर्ण आरंभ से प्रयत्न से पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करता हूं। अब आपको मालूम नहीं इसमें क्या करेगा, संपूर्ण पुरुषार्थ से ये करके ग्रहण करता हूं। उत्तरकाली ध्रुव आत्मा की बात तो सोचेंगे ना, उसी के में तो ज्ञान को गेय बनाएंगे ना, और क्या करना। ऐसा करता हूं जो निश्चय से अपने को और अपने चैतन्यात्मक द्रव्यत्व से संबंध पर को और पर के यथा योग्य द्रव्य से संबंध ही जानता है, सम्यक प्रकार से वह स्वपर विवेक को प्राप्त वह पुरुष संपूर्ण मोह का क्षय करता है। इसलिए मैं स्वपर विवेक के लिए प्रयत्नशील हूं। ये बात कह दी। अभी देखो, वैसे कोई ज्यादा है नहीं है, तुमको पढ़ने को कह दूं कि मैं ही पढ़ लू, अगली गाथा कल अगली गाथा पढ़ूंगा। उक्त दोनों गाथाओं और उनकी टीका में मात्र इतनी सी बात कही है कि जिस प्रकार तलवार धारण करने वाले करने मात्र से शत्रु को नहीं जीता जाता जब तक उस तलवार का उग्र पुरुषार्थ द्वारा प्रयोग न किया जाए, शत्रु पर वार न किया जाए, तब तक शत्रुओं को समाप्त नहीं किया जा सकता, तत्संबंधी आकुलता भी समाप्त नहीं होती। तलवार का उदाहरण दिया, ये कह रहे हो प्रयोग नहीं करोगे तलवार का। अब भाषा ऐसी हिंसक आ गई है, जैसे भगवान तलवार चलाने के लिए कह रहे हूं, ऐसा कुछ नहीं ना आचार्य महाराज। उसी प्रकार जिन्हें भगवान का उपदेश प्राप्त हो जाने मात्र से कर्म शत्रुओं को नहीं जीता जा सकता, माने आपने भगवान की बात है ये समझ ली, इतने से काम नहीं होगा। जब तक आत्मा मोह राग देश पर तीव्र प्रहार नहीं करता तब तक मोह राग देश का नाश नहीं होता, दुखों से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अन्य कोई धार्मिक क्रियाकांड ऐसा नहीं है जिससे दुखों से मुक्त हुआ जा सके। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये निर्णय कर लिया आपने, और अभी अपना ये जेल है, कारागृह है, अपना शत्रु है ना, तो अच्छी तरह सुखाना ना इसको, तो इसी का आदेश दे रहे होंगे ना, तलवार से बाहर करना, काटो जितना काट सकते हो। क्या क्या कह रहे हैं ये? अरे ये तो कह रहे हैं कि तुम तो अपने उपयोग को ही धन लगाओ, ये कह रहे हैं कि तुमने निर्णय कर लिया ना शरीर मैं नहीं हूं, बस बहुत है, बस इसी पे जमे रहो। तो अब शरीर का क्या करें? अरे तुम निर्णय कर लिया कि ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, समझे ना। इसलिए जो पुरुष सर्व दुखों से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें जिनेन्द्र भगवान के उपदेश से स्वपर का भेद विज्ञान करके मोह राग देश के नाश के लिए आत्मानुभूति पूर्वक पर से भिन्न निज आत्मा में अपनापन स्थापित करके उसी में जम जाना रम जाना चाहिए। ये निष्कर्ष है इसका। बस मैंने उग्र पुरुषार्थ काय को कह रहे हैं, वो तलवार चलाने का उदाहरण काय से दे रहे हैं, तो अपना ही आत्मा को जानना, जानते रहना, निरंतर करना, तो वो तो अपनी अपनी वर्तमान भूमिका में जितना संभव है उतना हो ही सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मुनियों जैसा हमारे यहां हम पे हो जाएगा, वो तो जिस भूमिका में हम होंगे उसी भूमिका के योग्य होगा, दसवें गुणस्थान बारह गुणस्थान जैसा थोड़ी हो जाएगा, लेकिन उतना तो हो। हम जिस भूमिका में हैं माने जितनी चीजें हमें ये मिल गई हैं जो मैंने आपको इतने भारा भावना पढ़ के सुनाई, तो वो उसका उपयोग तो करें। अब ये समझ लो ये सब इतनी चीजें मिली, इनकी अपन ने महिमा गाई और एक झटके में सब खत्म हो सकती हैं, क्यों हो सकती है ना कैलाश जी, ये पांच मिनट में सब साफ, कोई किसी से कुछ की सब जरूरत ही नहीं है। कैसा आप फिर भी मिल जाएंगे सब, फिर मिलेंगे सब बढ़िया से बढ़िया मिलेंगे, हाँ मिल जाएंगे, लेकिन बढ़िया का मतलब क्या, तेरी अनुकूलता जैसी जो जैसी तेरी अनुकूलता इस तत्व ज्ञान के प्रति यहां बनी है, ऐसी तत्व की अनुकूलता वहां बनी रहे, ऐसे सारे संयोग मिल जाएंगे क्या। मिल जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, मिल भी सकते हैं, मेरे कहने का मतलब असंभव कुछ नहीं है, है ना। लेकिन फिर भी इसके लिए कि हम उस दिन के इंतजार के लिए अपने इस काम को कल के लिए पोस्टपोन्ड नहीं करें, इनका वो लाभ हम आज ही और अभी ही उठाएं, ऐसी बात इस गाथा में कही गई है। चलो।